भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य।
नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आपका योग रहस्य में। योग इतनी प्यारी विद्या है, ये शायद आज से पहले हम कभी समझ नहीं पाए हैं। योग रहस्य की एक एक कड़ी में हम इसकी और गहराई और ऊंचाई को समझते जा रहे हैं। दोस्तों, योग से दूर होती सब व्याधि है, योग में छुपे सारे समाधान है, योग में ही सच्ची समाधि है। ये आपको मुस्कान भी देता है और जीने का उत्तम अरमान भी देता है। साथ ही साथ हम योग से ये भी सीख जाते हैं कि ये प्रकृति सब मिलकर चलती है, यहां हम सब एक दूसरे के लिए जीते हैं। और आज हमारे बीच हमारे मेहमान हैं, वो बहुत प्यारे योगी हैं और वो इस सत्य को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जहां जाते हैं वहां अपने ज्ञान को वो बांटते हैं, मिलकर सुख से जीने का तरीका सिखाते हैं। और आज हमें बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे बीच में है और अपनी विद्या को हमारे से बांटने आए हैं। आइए मैं आपका परिचय उनसे करवा दूं। हमारे बीच है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमल दीदी जी, जो कि बीकानेर से पधारी हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी भ्राता मोहन सिंगल जी माउंट आबू से पधारे हैं, और बहन हर्षिता जी, जो कि योगा के इंस्ट्रक्टर हैं ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में। आप सभी का दिल से स्वागत है। मोहन सिंगल भाई जी, आप साइंस और स्पिरिचुअलिटी, योग और अध्यात्म के विशेषज्ञ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं तो उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, वो कैसे लेते हैं इसको?
देखिए, आजकल विज्ञान का युग है
जी,
हर व्यक्ति उसे विज्ञान के तराजू पर तोलना चाहता है
जी,
और इसीलिए जब कोई भी बात कही जाती है उसका अगर उसे कुछ इमीडिएट लाभ प्रतीत होता है, महसूस होता है, जीवन में अनुभव होता है, तो उस बात को वो सहज स्वीकार कर लेता है
जी।
और यदि कोई बात कही जाए और उसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत समय के बाद कुछ लाभ की आशा की जाए तो सहज रीति से, क्योंकि आजकल बड़ा फास्ट टाइम है, एवरीबडी वांट्स क्विक रिजल्ट्स
जी,
तो इसीलिए योग का एक तो पहलू जो है वो ऐसा होना चाहिए बताने का कि भाई जो लोगों को सीधा अपील कर जाए
जी,
इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाए। तो मुझे इस संदर्भ में एक बात याद आती है कि हमारे तो विश्व भर में ब्रांचेस हैं ब्रह्मा कुमारीज के, तो लंदन के अल्बर्ट हॉल में दो महान योगी बैठे हुए थे वहां पर स्टेज पर, और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था,
यूरी गेलर और दादी जानकी। अच्छी बात ये थी कि मैं उस प्रोग्राम में वहां शामिल था।
वाह वाह वाह। तो आप और इस बात को और अधिक स्पष्ट, अगर मैं कहीं मिस कर जाऊं, और जैसा मैंने सुना है कि यूरी गेलर ने हाथ में बीज लेके स्प्राउट उन्हें कैसे, जस्ट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड
जी,
ध्यान केंद्रीकरण करके अपने, कोई नॉर्मल केस में बिलीव नहीं करेगा, लेकिन वो तो सब देख रहे थे कि कैसे बीच से स्प्राउट निकले
जी।
और इतना नहीं, ये तो दूर का था, वहां से ही उसने ना कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से लोगों के पैंट का जेब में जो कार की चाबियां पड़ी हुई थी उनको भी उसने मोड़ दिया
जी।
हर एक ने देखा, अरे कई लोग तो थोड़ा घबरा गए, अब कैसे कार स्टार्ट होगी, तो ये करके फिर उसको मतलब रिवर्ट कर दिया। भाव कहने का यह है कि योग का प्रयोग जो है, हम अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर कई रीति से इन्हें कर सकते हैं
जी।
और इस संदर्भ में मुझे याद आ रहा है, यहां शायद पहले वर्णन भी हुआ हो, योग का प्रयोग अपने हार्ट की आर्टरीज को खोलने के लिए हुए
हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि योग जो है
जी,
वो आप अपने विचारों से, अपनी एकाग्रता से बाहर की जो प्रकृति है, बाहर की चीजें हैं, उस पर भी इसका प्रभाव जाता है।
जा सकता
दीदी जी, आपका कुछ ऐसा अनुभव है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा गुजरा और आपने किया तो बाहर के हालात भी आपकी मनोस्थिति से बदल गए?
अवश्य ही, योग से सर्व परिस्थितियां परिवर्तन हो जाती हैं, क्योंकि जब हम योगाभ्यास करते हैं तो संपूर्ण रूप से हमारा एक एक संकल्प जो है अपने को आत्मा अनुभव करते हुए एक परमात्मा की ओर प्रवाहित होता रहता है। तो उससे कितनी भी कोई अशांत परिस्थिति हो और उसमें अगर हम गए हैं, वहां सारे लोग बहुत परेशान हैं, अशांत है, दुखी है, हम अगर वहां पहुंच करके थोड़ा सा योग का प्रयोग करते हैं, योग में रह करके उन सभी से दो मिनट भी ओम शांति शब्द का उच्चारण करते हैं
जी।
तो तुरंत ही धीरे 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 उनका जो दुख का लेवल है, परेशानी का लेवल है, वो कम हो गया और अपने आप ही धीरे 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 वो सब जो परेशान है वो शांत होते जाते हैं।
ये ओम शांति और योग का कोई आपस में संबंध है इस शब्द और इस योग का?
जरूर संबंध है, क्योंकि हम जब ओम शब्द बोलते हैं तो अपने मन में ये अभ्यास करते हैं कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। तो शब्द उच्चारण के साथ साथ अंदर में हमारे मन का एक एक संकल्प भी परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। मैं स्वयं भी शांत स्वरूप हूँ और परमात्मा भी शांति का सागर है। ये संकल्प अंदर उत्पन्न होते ही शांति भी अंदर क्रिएट हो जाती है और हमारे द्वारा वातावरण में दूसरी व्यक्तियों तक भी वो पहुंचती है।
बिल्कुल।
और उस कारण से कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत अपने दुख से, कोई शारीरिक पीड़ा से करा रहा हो, ऐसे समय पर हम जाकर के बहुत प्यार से योग युक्त होकर उसे एक शब्द भी ये बोलते हैं तो धीरे 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 वो स्वयं भी उस दुख की पीड़ा से बिल्कुल मुक्त हो जाता है।
शांति प्रवाहित होती, जब शांति कहो तो शांति प्रवाहित होती। भारत में जो ग्रीट करने का तरीका है ये बहुत अच्छा है। ओम शांति कहते हैं या नमस्ते कहते हैं, और नमस्ते का भी अर्थ मैंने पढ़ा था बहुत अच्छा है कि मैं आत्मा, आप आत्मा के गुणों को देखते हुए आपको नम्र होकर प्रणाम करती हूँ। इससे प्रेम भाव और नम्रता, निरहंकारिता भी आती। कितना अच्छा अर्थ है, हम नमस्ते बोल तो देते हैं, शायद कभी इसके सही रहस्य को नहीं समझते। तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, शुक्रिया दीदी जी। हमारे बीच हर्षिता बहन है जो कि योगा की इंस्ट्रक्टर है, आइए उनसे कुछ योगा के और आसन या कुछ और क्रियाओं को जानते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को और लाभ देंगे।
सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हु वी आर
जी।
सो वी आर बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड एनर्जी। वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर
जी।
सो जो मैं सीक्वेंस दे रही हूँ कि हम पहले प्राणायाम से शुरू करें, फिर आसन करें और फिर मेडिटेशन करें। सो प्राणायाम से हम क्या कर रहे हैं? प्राण मीन्स एनर्जी। सो जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ब्रेथ को होल्ड कर रहे हैं, तो हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडी प्यूरिफाई हो रही है। सो वी आर प्यूरिफाइंग आवर बॉडी। उसके बाद आसना से वी आर कंट्रोलिंग आवर बॉडी, वी आर डिसिप्लिनिंग आवर बॉडी। और उसके बाद जब मेडिटेशन है, मेडिटेशन आजकल लोगों को लगता है कि वो थोड़े एजेड लोगों का है, लेकिन बहुत जरूरी है एक फोकस्ड माइंड, एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के लिए। रिसेंटली गोवा में और उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल्स के अंदर योगा कंपलसरी हो गया है
जी।
तो एक्चुअली ये सारे स्कूल्स में होना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेट होते हैं बच्चे। बहुत जरूरी है कि आजकल यूथ में अवेयरनेस लेके आए, इसके इम्पोर्टेंस को बताया जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आजकल फॉरेन में ज्यादा योगा का अवेयरनेस है, लोग भागे चले आ रहे हैं। जहां से मैंने एक कोर्स किया है वहां पे सारे मेरे कोर्स में फॉरेनर्स थे, इंडियंस वहां पे इतने अवेयर नहीं है
जी। मतलब तो दीपक तले अंधेरा नहीं होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए,
पूरी रोशनी होनी चाहिए।
चाइना और जापान में 70-80% जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं वो ऋषिकेश और हरिद्वार से हैं। तो इंडिया में मुझे इतना क्रेज नहीं लगता है। तो जरूरी है कि हम अपने यूथ को, जो हमारे चिल्ड्रन हैं, उनको अवेयर करें, योगा की इम्पोर्टेंस उसको बताएं। तो मेडिटेशन से आप अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं। तो इनिशियली मैं कहूंगी कि आप मेडिटेशन 2-3 मिनट से करें, अपने ब्रेथ को कंट्रोल करें एक एज अ टूल। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज जो है ये प्राणायाम, आसन और मेडिटेशन का पूरे बेनिफिट्स
पूरा ले सकते हैं। शुरुआत जरूर करनी चाहिए, भले 2 मिनट से 5 मिनट से की जाए, बट शुरुआत होनी चाहिए।
जरूर।
आइए आप हमें थोड़े करके बताइए।
हाँ जी, मैंने आपको जो सीक्वेंस बताई थी, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, उसके बाद आप जो भी आसन लेना चाहें, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, तो मैं उसके आगे के आज कुछ आसन आपको बताती हूँ। स्पाइनल ट्विस्ट एंड वन बैलेंसिंग पोज, एंड देन हम अपना जो ये सीक्वेंस है ये मेडिटेशन से कॉन्क्लूड करेंगे। तो स्पाइनल ट्विस्ट का फर्स्ट पोज, अपनी लेग्स बाहर की तरफ रख लीजिए और जस्ट टर्न योर ट्रंक टूवर्ड्स योर राइट, और आपका जो राइट हैंड है वो आपकी बॉडी से क्लोजर हो, और कोशिश करें कि जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके राइट हैंड के क्लोजर हो। देन आप अपनी लेफ्ट नी बेंड करें और उसे राइट नी के आउटसाइड में रखें, एंड इनहेल एंड एक्सहेल ट्विस्ट, एंड सिट स्ट्रेट, योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, एंड जस्ट ट्विस्ट। And exhale and release. Now switch sides. Turn your trunk to your left. And release. This pose is very good for your stretching for your spine, aur aapke neck pain aur back pain ke liye bhi bahut acha hai. And people who are suffering with the heart disease and high blood pressure, hernia, please do not practice this pose. And next we will do one balancing pose, Nataraj Asana. Just bend your right knee aur apne ankle ko grab kare and apna balance maintain kare left leg pe. And ab aap dheere dheere apna jo right leg hai usse apne body se दूर ले जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे एज हायर एज यू कैन, एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर लेफ्ट हैंड, एंड रिलीज, एंड रिपीट विद अनदर साइड, ब्रीथ नॉर्मली, एंड रिलीज। And just conclude our practice with the meditation. अपनी breathing पे control focus करें. Deep inhalation and complete exhalation. And slowly bring your focus between your forehead . Bring your awareness back . Rub your palms and just place it over your eyes. Open your eyes underneath your palms and give a gentle massage over your face, and after this you can lie down in Savasana.
तो दोस्तों, देखा आपने हर्षिता बहन ने कितनी अच्छी तरह आपको आसन बताए, कुछ योग के बारे में बताया, और एक मेडिटेशन की छोटी सी उन्होंने बिल्कुल जो शुरुआत की विधि है वो बताई, कि जिसने कभी कुछ नहीं किया है, जिसको बिल्कुल एकाग्रता का कोई अभ्यास नहीं है, वो बिल्कुल इससे शुरू कर सकता है कि आप शांति से बैठ जाइए और आप अपने नाक पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और सांस अंदर सांस बाहर इसको देखिए। आप जब ये करना शुरू करेंगे आप पाएंगे कि आपके उसके पीछे बहुत सारे विचार दौड़ रहे हैं, आप उनकी बिल्कुल परवाह मत कीजिए, आप बस अपने ध्यान को यहां केंद्रित कीजिए, सांस आ रही है सांस जा रही। कुछ मिनट बाद जब वो आपका थोड़ा ध्यान केंद्रित होने लगे, वो उस अवस्था में आ जाए, तो आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि इस शरीर द्वारा, इस नाक द्वारा जो सांस लेने वाली हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन जो इस शरीर का इस समय यूज कर रही हूं। तो आप धीरे धीरे आत्मभान की ओर इससे शुरुआत करके इससे पीछे जा सकते हैं। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी अनुभूतियां होने लग जाएंगी। आप किसी राजयोगी का, कोई जो अच्छा मेडिटेशन करने वाला है, इसकी ऊपर की अवस्थाओं को जानता है, उनका सहयोग भी ले सकते हैं। मैं अब आता हूं हमारे भ्राता मोहन सिंघल जी की तरफ। मोहन सिंगल जी, जैसे इन्होंने एकाग्रता का बताया कि आप मेडिटेशन में एकाग्रता से शुरू करते हैं, तो कहां तक वो एकाग्रता पहुंच जाती है और जीवन में क्या क्या लाभ दे जाती है वो?
देखिए, जीवन में सफलता का मुख्य साधन जो प्रतीत होता है वो है एकाग्रता
जी।
और जब एकाग्रता कंसंट्रेशन होती है तो इतनी एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है कि डिजायर्ड रिजल्ट उत्पन्न करती है। बचपन में हम सब ने वो एक्सपेरिमेंट एक किया होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस को सूरज के सामने रख लेते हैं
जी,
तो सारी किरणें एक जगह एकाग्र हो जाती हैं और नीचे कागज हो कुछ हो जला देती है। अब वही सूर्य है वही, लेकिन उसमें उतनी किरणें गर्मी नहीं होती, तो ये एकाग्रता का प्रभाव
जी।
है। इसके लिए हमारे इतिहास में भी बहुत उदाहरण मिलते हैं। हम सब ने प्रसिद्ध तानसेन जी का नाम सुना होगा, गायक का। वो अपने संगीत के द्वारा ऐसी राग निकाला करते थे, जब दीपक राग निकालते थे तो कहते हैं दीपक जल जाया करते थे, जब मल्हार राग निकालते थे तो बरसात होने लगती थी बारिश। तो ये एक केवल कल्पना नहीं बल्कि ये एक्चुअली इट इज ए साइंस, और साइंस के द्वारा हम लोग किस प्रकार से ऐसे वाइब्रेशन, ये मेडिकल, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनके द्वारा ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट की है जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है जो बादलों की फ्रीक्वेंसी है
जी।
और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है तो वो बादल पानी देने लगते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल।
हम लोगों को, मैं एमटेक हूं और हम लोगों को पढ़ाया गया था, मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट एक होता है मौसम विज्ञान का, उसमें बताया गया था कि आर्टिफिशियल रेन एक सब्जेक्ट है। तो कई बार होता है बादल भी होते हैं लेकिन बरसात नहीं होती, और बहुत गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कई बार, तो उसके लिए सिंपल यह है कि बादल हैं
जी,
मटेरियल है, लेकिन वो एक तरफ कंसंट्रेट नहीं हो पाते, न्यूक्लियस उसमें चाहिए
जी।
और जब गवर्नमेंट आर्टिफिशियल मीन से प्लेन के द्वारा न्यूक्लियस उसके अंदर पोर कर देती है, जो मोस्टली सिल्वर क्लोराइड होता है न्यूक्लियस, तो उससे क्या होता है, जब न्यूक्लियस हो गया फिर क्लाउड एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बरसात होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसी सिद्धांत पर ही काम करता है कि वहां तो फिजिकली आपने उसमें पोर किए, उसके अंदर डाले, इसके अंदर आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट की है जो अल्टीमेटली वहां जाके वो न्यूक्लियस का वर्क करती है और वो रेन होने लगती है।
ये पूरा अपने आप में विज्ञान है,
पूरा विज्ञान। तो ये वही कर सकता है, संगीत बहुत बजाते हैं लेकिन ये वो इसमें इतना तन्मय हो जाए, एकाग्र हो जाए, अपने को भी भूल जाए, और तब वो अगर ऐसा संगीत निकालता है जो भी वो जनरेट करेगा इट विल प्रोड्यूस रिजल्ट
जी।
तो एक ये संगीत की बात है या दीपक राग की बात है, और ये इसी बात को राजयोगी इस प्रकार बताते हैं कि जो एक इनर नेचर होती है, ह्यूमन नेचर, और ये बाहर की नेचर है
जी,
दोनों की जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है देन इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। और इसमें उदाहरण सिंपल दिया जाता है, जो सतयुग त्रेता युग है, गोल्डन एज जो है, बहुत अच्छी एज है, वहां प्रकृति भी दासी है, कोई पांच तत्व तो कोई उपद्रव नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो रहते हैं, जो देवी देवता कहलाते हैं, उनकी आंतरिक प्रकृति भी इतनी सतो प्रधान है कि बाहर की प्रकृति भी वो सतो प्रधान हो जाती है। और इस रीति से कहते हैं ये कि शेर बकरी घाट पर पानी पीते हैं, अब शेर होता है
जी,
लेकिन अपनी वायलेंट नेचर को के वश नहीं होता,
बिल्कुल
वो भी प्रेम के वशीभूत होकर कार्य करता।
तो योग का इतनी एकाग्रता का महत्व है कि बाहर की हर चीज पे
जी हाँ
प्रभाव। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं नेचुरल, जैसे आपने अपनी अंदर की विचारों की स्थिति बात की है कि वो कहीं भी जाते हैं वो सबसे प्रेम से मिलेंगे, बड़ा अच्छा एनवायरमेंट हो जाएगा। कुछ लोग जहां जाते हैं वहां झगड़ा ही करके आते हैं।
राइट।
तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपकी अपनी अवस्था कैसी है, आपकी अपनी एकाग्रता कैसी, किस चीज से आप जुड़े हैं, कैसे विचारों से, तो क्या आप छोड़ रहे हैं, किस फ्रिक्वेंसी, किस वाइब्रेशन को, तो वैसा ही सब बनने लग जाता है।
बिल्कुल।
दीदी जी, एकाग्रता की बात चल रही, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे योग में सब बैठते हैं तो उस समय वैसे सीधे होकर बैठते हैं, गर्दन सीधी होती है, स्पाइन सीधा होता है, आंखें ऐसे सीधी होती, तो उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है?
इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि योग की जो हमारी बैठक है, सुखासन में बैठकर स्पाइनल कॉर्ड को एकदम स्ट्रेट रखकर, आंखों को सीधी लाइन में रख करके, और संकल्प यह क्रिएट करते हैं कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, तो उस समय आप अनुभव करेंगे कि 5 मिनट 7 मिनट इस स्थिति में बैठने के बाद धीरे धीरे हमारी जो सांस है वो एकदम बिल्कुल कंट्रोल में हो जाता है। उस हमारे जो हार्ट बीटिंग है उसकी संख्या भी कम होने लगती है, क्योंकि हमारे संकल्प कम हो जाते, पावरफुल हो जाते
जी,
प्योर हो जाते, पीसफुल हो जाते। और उसके कारण मैं आयुर्वेद की भाषा में कहूं तो हमारा सांस जो है वो इड़ा पिंगला और ये सुषुम्ना नाड़ी में चलने लग जाता है। तो इस कारण से हमें धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि हम सचमुच शरीर में होते हुए भी शरीर से बिल्कुल अलग हैं
जी,
एकदम डिटेच भी हैं, अटैच होते हुए डिटेच है। जैसे पद्मासन करते हैं, अलग अलग आसन करते हैं तो उसकी अलग अलग अनुभूति है। तो ये भी एक पद्मासन मन की स्थिति के आधार पर है कि हम शरीर में होते हुए भी कमल फूल के समान शरीर से बिल्कुल अलग है। ये इंद्रियां सारी नीचे
हैं और
मैं आत्मा बिल्कुल ऊपर हूँ,
ऊपर है।
ऐसी एक बहुत गुही अनुभूति होती है
जी,
जिससे हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं
जी।
तो रिलैक्सेशन के लिए जैसे शवासन किया जाता है, ये भी राजयोग की भी एक विधि है जिसमें हम सहज ही अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं।
बहुत अच्छा दीदी, मुझे याद आता है जब बचपन में मुझसे कहा जाता था कि राजयोग करो, तो मैंने एक बार प्रश्न करा था कि कहते थे भगवान को याद करो, सीधे सीधे घर में बात होती थी, तो मैंने पूछा था जी इससे भगवान को क्या मिलेगा, वो क्यों कहता है मुझे याद किया जाए, ध्यान किया जाए। तो उस समय तो समझ नहीं आई थी, तो जब वक्त बीता, वक्त के साथ करते करते समझ आया कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान में तो कुछ नहीं बदलता बल्कि हम पूरा बदल जाते हैं, इसलिए इसे करना चाहिए ताकि हमारा जीवन हर दिन निखरता जाए, बेहतर होता जाए। आइए एक योग का क्लिप देखते हैं और कुछ और योग की अच्छी बात सुनते हैं।
हम देखते हैं कि आज संसार के अंदर, लोगों के अंदर योग के प्रति एक जागृति आई हुई है, लेकिन हमने यह भी देखा कि उस योग दिवस पर विशेष जो योगा किया जाता है जिसके अंदर आसन प्राणायाम को ही स्थान दिया हुआ है, हाँ अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए ऐसे योग आसन भी बहुत आवश्यक है। परंतु हम देखते हैं कि आज दुनिया के अंदर हर मनुष्य के जीवन के अंदर जो दुख अशांति है, उसका मन जो अशांत है, मन कमजोर है, तो मन को शक्तिशाली कैसे बनाए। तो जैसे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए उस योग आसन के प्रति जागृति आई है, ऐसे ही अपने मन को दुरुस्त करने के लिए भी यह राज्यों का मेडिटेशन यह भी बहुत आवश्यक है और उसके प्रति भी जागृति होना बहुत जरूरी है। मैं अगर अपने अनुभव के अंदर कहूं तो पिछले 40 वर्षों से मैं इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के साथ जुड़ी हुई हूं, और पहले ही दिन जब विद्यालय के अंदर आकर के मैंने योगा के बारे में सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी योग को सुनते हुए ही अंदर से एक निश्चय हुआ कि यह योग अपने जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और मेरे जीवन के कई ऐसे अनुभव भी है कि जहां पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई हुई हो तो मैंने इसी योग का ही अपना सहारा लिया, योग को ही अपना आधार बनाया और उसी के आधार पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अपने जीवन की उन्नति के लिए कहो या तो कहीं अपने जीवन के अंदर नए नए अनुभवों को करने के लिए भी मैंने योग को ही अपना आधार बनाया। मैं ऐसे समय पर विशेष योग अभ्यास करती थी और प्रभु पिता के साथ मन के तार को जोड़ते हुए मैं जो भी अपने दिल की बात है वो प्रभु पिता के सम्मुख रखती थी और उसके आधार पर मैं अपने जीवन के अंदर उन्नति भी करती रही। जो भी कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करती रही, यहाँ तक कि मुझे जीवन बनानी थी और मेरे घर वालों से मुझे सहयोग चाहिए था तो उसके लिए भी मैंने प्रभु पिता के आगे ही अपने मन की बात को रखा। कि मुझे ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनानी है तो मेरे घर वालों की तरफ से भी मुझे पूरा सहयोग मिले और मैं ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाऊं, तो सचमुच प्रभु पिता की ही सहायता से या तो उनकी ही मदद से मैं मेरे घर वालों से भी बंधन से मुक्त हुई और इस जीवन को बनाने में सफल हुई। इस जीवन को बनाने के बाद भी चलते चलते जहां पर भी मुझे लगता था कि मुझे कुछ नया सीखना है तो मैं वह बात को प्रभु पिता के सन्मुख रख देती थी और प्रभु पिता को ही कहती थी कि मुझे इस बात को सीखना है, चाहे भाषण करना है या कुछ भी है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं आता था। लेकिन परमात्मा के सन्मुख में मेरे मन के संकल्प को रख करके फिर जब मैं वो अभ्यास करती थी तो मुझे उसमें सफलता मिलती थी और मुझे वो आ जाता था। यहाँ तक कि मैंने अपने जीवन के अनुभव के अंदर यह भी देखा कि मेरी पहले की जो लाइफ थी और उसके अंदर मुझे बार बार गुस्सा आ जाता था, लेकिन इस योग के अभ्यास के बाद मैंने अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल पाया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति होती है लेकिन मैं अपने मन को एकदम शांत रख सकती हूँ। कई ऐसी बातें होती है कि जहाँ पर व्यक्ति अपनी धीरज खो बैठता है तो वहां पर भी मैं अपने मन के अंदर वो धीरज बनाए रखती हूँ, अर्थात कैसी भी परिस्थिति सामने आती है लेकिन मेरा मन शांत रहता है और मैं अपने मन को स्टेबल रख सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि परमात्मा पिता के सिखाए हुए इस राज्यों के माध्यम से मैंने अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाया है। मैं अपने जीवन के अंदर वो संतुष्टि का अनुभव करती हूँ कि सचमुच जो पाना था वह मैंने पा लिया है।
तो दोस्तों, योग की इस अद्भुत यात्रा में हमने बहुत वक्त साथ बिताया और योग के अलग अलग आयामों को हमने जाना है। और मैं शुक्रिया करना चाहूंगा अपने आदरणीय मेहमानों का जिन्होंने आकर अपने योग को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को हमसे बांटा, हमें एक नई नजर दी, नया नजरिया दिया, हम सब में उत्साह भरा। हमारी आदरणीय दीदी कमल जी, आपका शुक्रिया। आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी, बहन हर्षिता जी, आप सबका दिल दिल से शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम को और सजाने के लिए, इसे सुंदर बनाने के लिए। दोस्तों, योग आप जब भी करें, एक अच्छे वातावरण में करें, जब आप शुरुआत करें, आसपास का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा शोर ना हो, टेलीविजन ना चल रहा हो, तो आपको एक अच्छी शुरुआत मिल जाएगी। आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए, प्रसन्नचित होकर, विश्वास रख के कहें और अपने आप से कहें कि मुझे अपने ऊपर और योग पे विश्वास है। ये आपका विश्वास, ये श्रद्धा आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा। आप जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे और योग से सब आसान होता चला जाता है और उसके लिए हर राहें आसान हो जाती हैं जिस पर वो मेहरबान होता चला जाता है। और आप पर प्रकृति, आपके साथी और ईश्वर रहे मेहरबान। योग से आप पाएं सब बेहतरीन जो आप चाहते हैं, शुभ आशाएं आपकी पूरी हो और आपकी जिंदगी के लिए जो भी जरूरत है, यकीन मानिए उसे शुरुआत करने का यही सबसे अच्छा मुहूर्त है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। नमस्कार।